صفحہ نمبر 275 ایران میں مغربی انداز 1852 میں ناصرالدین شاہ قاجار کے زمانے میں اپنانے شروع کیے. 1879 میں انگریزوں نے وہاں اپنا بینک کیمپ کیا اور کچھ عرصے بعد سلطنت کے کسٹمرز کی وصولی کا انتظام بیلجیم نے سنبھال لیا. ملک میں برطانیہ اور روس کا اقتدار روز بروز بڑھنے لگا کیونکہ شاہ اپنی ضروریات کے لیے ان سے مسلسل قرضے لیے جا رہا تھا, لہذا ایران ان طاقتوں کا مقروض ہوتا جا رہا تھا. نتیجے کے طور پر ایران میں بھی قومی تحریک شروع ہوئی اور عوام نے آئین کے نفاذ کا مطالبہ کیا. ناصر الدین شاہ کے قتل کے بعد جب مظفر الدین شاہ تخت نشین ہوا تو شاہ پسندوں اور آئین پسندوں کے درمیان کشمکش جاری ہو گئی. اس کشمکش میں روس نے تو اب شاہ کی حمایت کی مگر برطانیہ نے آئین پسندوں کا ساتھ دیا, اس لیے نہیں کہ انگریز ایران میں دستور کے نفاذ میں دلچسپی رکھتے تھے بلکہ محض اس لیے کہ ان کا حریف روس شاہ کی حمایت کر رہا تھا. بلاخر اس کشمکش میں آئین پسند کامیاب ہوئے. 1906 میں مظفر الدین شاہ دستور کے نفاذ پر مجبور ہوا اور قومی مجلس کا قیام عمل میں آیا. ایرانیوں نے اپنا قومی بینک کیمپ کیا جس پر برطانیہ نے روس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے 1907 میں ایک معاہدہ کر دیا. اس معاہدے کی روح سے اثر و رسوخ کے لحاظ سے ایران کے دو حصے کر لیے گئے. شمالی حصے پر روس کی برتری تسلیم کر لی گئی اور جنوبی حصے پر برطانیہ مسلط ہو گیا. 1908 میں محمد علی شاہ نے روسیوں کی مدد سے پھر آئین کا خاتمہ کر دیا, جس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور آئین پسندوں کی دوبارہ لڑائی ہوئی جس میں آئین پسند کامیاب رہے. اس کامیابی کو فتح ملی کا نام دیا گیا اور 1909 میں محمد علی شاہ کو مجبور کر دیا گیا. یورپ میں جرمنی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے فرانس, برطانیہ اور روس بہت خائف تھے, اس لیے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی خاطر یورپ کی قوموں میں معاہدوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان معاہدوں میں جرمنی اور اٹلی کی قومی حیثیت پر تاریخ یورپ میں پہلی بار تسلیم کیا گیا. فرانسیسی جرمنوں اور جرمن فرانسیسیوں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. نیز فرانسیسی جرمنوں کے ہاتھوں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تل ملا رہے تھے. اسی طرح آسٹریا ہنگری سلطنت اور روس ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. انگریز جرمنوں کو سنت و حرافت اور تجارت کے معاملات میں اپنا رقیب سمجھتے تھے اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے نیچا دکھانے کے درپے تھے. بلاخر طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے ایک طرف تو جرمنی اور آسٹریا ہنگری سلطنت کا معاہدہ ہو گیا اور دوسری طرف 1907 میں برطانیہ فرانس اور روس کے درمیان ٹرپل دہانت معاہدہ طے پایا. یوں یورپ کی استعماری طاقتیں دو واضح دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. اقبال اپنے دل و دماغ کی سرگزش یا اپنے خیالات کی تدریجی تغیر کے متعلق اگر خود تحریر کرتے تو ان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ممکن ہے بہت سے دلچسپ انکشافات ہوتے, لیکن اب تو اس عظیم انقلاب کا جائزہ صرف خارجی طور پر ہی لیا جا سکتا ہے. اقبال یورپ جاتے وقت وطنی قومیت کے نشے سے شرشار تھے. جب ان کا جہاز اٹلی کے ساحل کے قریب سے گزرا تو انہوں نے تعظیماً ارشاد کیا, ہرے رہو وطن مازنی کے میدانوں, جہاز پر سے تمہیں ہم سلام کرتے ہیں. مگر انگلستان میں ابھی 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ رفتہ رفتہ ان کے سامنے وطنی قومیت کے انسان دشمن اور تاریخ پہلو نمایاں ہونے لگے. انہیں اس احساس ہونے لگا کہ انسان کا کسی علاقے میں پیدا ہو کر کسی مخصوص رنگ نسل یا زبان سے تعلق رکھنا محض ایک اتفاق ہے جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں. اس اتفاق کی بنا پر اس کا تکبر کرنا یا ایک مخصوص انسانی گروہ یا خطہ زمین سے محبت کرنا اور دنیا بھر کے دوسرے انسانوں سے نفرت کرنا, نیز انہیں کم تر سمجھ کر مغلوب کرنا, ان کے حقوق غلط کرنا اور ان کا احتساب کرنا, کیا مذہبی روحانی اخلاقی یا کسی بھی اعتبار سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان کے پیش نظر وطنیت کا مغربی تصور انسان دوستی یا احترام آدمیت کے افاقی اصولوں کے سراسر منافی تھا. 1907 میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ یورپی قوموں کے گروہ عسکری طاقت کے بعد بولتے پر ایک دوسرے کے خلاف سخت ارا ہو گئے ہیں. ان کی نگاہ میں یہ محاذرائی ڈاکوؤں کے گروہ کی محاذرائی تھی جو غاصبانہ تجارت کو وسعت دینے یا کمزوروں کی غارت گری کی خاطر کی گئی تھی. بس اقبال کے دل میں نہ صرف مغربی استعمار اور مقلویت کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہوا بلکہ وہ وطنی قومیت کے جذبے کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. یہ نفرت و حقارت اس قدر عمیق تھی کہ بعد میں اپنی وطنی قومیت کی شہری پر بھی نادم تھے اور دوسرا اوقات کہا کرتے تھے کہ یورپ قیام سے قبل کا کلام میرے زمانہ جہلیت کا کلام ہے. بہر اقبال کے ساتھ ستمبر 1921 کے خط اور مارچ 1907 کی تحریر کرتا غضب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ احساس کہ نسلی امتیاز و ملکی قومیت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. قیام کیمبرج کے آخری ایام میں ट्रिपल तहानत माहदे की तशहीर के वक्त पैदा हुआ और मुतज़क्करा गज़ल या मलुकियत या वतनीयत के यूरोपी तसव्वुर के खिलाफ रद्दे अमल के तौर पर बरमला इजहार की सूरत थी। दियारे मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खला जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जर कम यार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। खुदा के आशिक तो हैं हजारों बनों में, फिरते हैं मारे मारे, मैं इसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सुना दिया गोशे मुंतजर को हजाज की खामोशी ने आखिर, जो अहदे सहराइयों से बांधा गया था फिर अस्तवार होगा, निकल के सैलाब से जिसने रूमा की सल्तनत को उल्ट दिया था। सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा, मैं जुलमत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमानदा कारवा को, शरर फशा होगी अब मेरी नफ्स, मेरा शोला बार होगा। इस मरहले पर सवाल पैदा होता है कि इस जमाने में मलुकियत अमार और वतनी कौमियत की मुखालफत में यूरोप में बाद तसवरात मसलन बैन अल-अक़वामियत, काल मोपाली, टेररिज्म, इंसान दोस्ती, हुमोइनिज्म, इश्तराकियत, रेडिकलिज्म, सोशलिज्म वगैरह मौजूद थे, जो एहतराम आदमियत को मलहूज रखते हुए आलमी हुकूमत की बुनियादों पर एक नई दुनिया वजूद बनाने की तरगीब देते थे। और रूस में कई खुफिया सोसाइटियां अमली तौर पर मलुकियत के खिलाफ बरसरे अमल थीं। इकबाल ने अगर मलुकियत इस्तेमाल ने वतनी कौमियत को रद्द किया तो इनके तसव्वुरात में से किसी एक को कबूल करने की बजाय इस्लाम के बुनियादी असूल की तरफ रुजू करना क्यों किया? इसका मुख्तसर जवाब यह है कि तमाम मुतज़क्करा तसव्वुरात व नजरियात यूरोप के फलसफे अक़लियत की पैदावार थे। इनकी बुनियाद माता परस्ती पर रखी गई थी। यूरोप आने से कई वर्ष कबल लाहौर में तालिब इल्मी ही के जमाने में इकबाल पर 18वीं और 19वीं सदी के सफा नंबर 279 यूरोपी फलसफे अक़लियत का खोखलापन जाहिर हो चुका था। इस वक्त उन्होंने इसका काबिल फहम जवाब वजूदी तसव्वुफ में पैदा पाया था, मगर इनके लिए फलसफा और वजूदी तसव्वुफ दोनों अपनी अहमियत खो चुके थे। वो मुकाम अकल से गुजर कर मुकाम शौक की तरफ रवान दुआ थे। फलसफा इनके नजदीक एक विकार ज़हनी मशक की हैसियत अख्तियार करता जा रहा था और वजूदी तसव्वुफ की तालीमात को वो अफ्यूम का नशा समझने लगे थे। ये दुरुस्त है कि माशियात में गहरी दिलचस्पी के सबब और अपने अहद के मादा प्रस्ताना नजरियात से बाखबर होने की खातर उन्होंने कैम्ब्रिज और लंदन में माशियात के मौजू पर कई लेक्चर खसूसी तौर पर सुने और इनसे असर भी कबूल किया, लेकिन वो किसी भी माशी नजरिए या मफरूजे से गुमराह ना हुए। कुरान मजीद में लफ्ज कौम एक ग्रोह या कबीले के मान में इस्तेमाल हुआ है। बाल्फाज दीगर कुरानी नुक्ता नजर के मुताबिक इंसानों का ऐसा ग्रोह जो मुश्तरक नस्ल, रंग, जुबान या इलाके की बुनियादों पर वजूद में आया हो एक कबीला या एक कौम कहला सकती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि हमने तुम्हें कबीलों और जातों की हैयत में इसलिए बनाया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, लेकिन अल्लाह की निगाह में तुम सबसे बेहतर वही है जिसकी जिंदगी पाकीज़ा है। बहर कैफ इस्लाम पर ईमान लाने के सिलसिला में कुरान मजीद किसी कबीले या कौम में शामिल होने का जिक्र नहीं करता, बल्कि उम्मत या मिल्लत में दाखिल होने की दावत देता है। पास उम्मत या मिल्लत से मुराद इंसानों की ऐसी जमात है जिसके इतिहाद की बिना फकत ईमान या अकीदे का इश्तराक है, और इस इश्तराक में मुख्तलिफ कौमें व कबीले और दातें समा सकती हैं। इस्लाम में इश्तराक के ईमान पर इतिहाद की बुनियाद पर इतिहाद इंसानी का तसव्वुर जिस तरह नस्ल, रंग या जुबान की असबीतों को मटाता है, इसी तरह इलाके या वतन की कैद से आजाद है। हयात तैबा से जाहिर है कि अन हजूर ने अपने अबाई वतन यानी मक्का से अपने ईमान की के तहफ्फुज की खातर हिजरत की और मदीने पहुंचकर महाजरीन और इंसार को ईमान के इश्तराक की बुनियाद बनाकर एक दूसरे के साथ अखूबत के रिश्ते से में मुंसलिक किया। गोया मदीने में कायम करता मिल्लत इस्लामिया का इंहसार इतिहाद वतन पर नहीं बल्कि इश्तराक के ईमान के असूल पर था। बस इस लिहाज से मिल्लत इस्लामिया का कोई अबाई वतन नहीं बल्कि हर वो सरजमीन इसका वतन है जिसमें मुसलमान इश्तराक ईमान की बुनियाद पर मुतहद होकर इस्लामी मुआशरा कायम करें। इंग्लिस्तान में गलबन इस्लामी तालीमात का यही पहलू इकबाल के पेशे नजर था, जब उन्होंने इसी दौर की एक और नज़्म में फरमाया, नराला सारे जहां से इसको अरब के ममार ने बनाया, बना हमारे सारे मिल्लत की इतिहाद वतन नहीं है, कहाँ का आना कहाँ का जाना, फ्रेब से इम्तियाज अकबा नमूद हर शहर में है हमारी, कहीं हमारा वतन नहीं है। इकबाल ने मुशाहिदा किया कि रूस और यूरोप की नौबंदियात थी ताकि अपनी अपनी अगराज के हसूल की खातर दुनिया इस्लाम को मुस्तकिल तौर पर पारा पारा या मुंतशिर रखना चाहती हैं, क्योंकि इस अजमत अमली से वो यकबार दीगर मुस्लिम इलाकों पर काबिज होकर या मुसलमानों के हकूक गजब करके इनका इहतसाल जारी रख सकती हैं। इकबाल ने महसूस किया कि वतनियत के यूरोपी सफर के जेर असर मिस्र, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और अरब ममालक में भी कौमी तरीके वजूद में आ चुकी हैं। इनमें से बाद मुल्कों में तो इन्हीं तरीकों के जरिए कौमी आजादी के हसूल के लिए कशमकश जारी थी। इकबाल की निगाह में मजहब दुनिया में सुलह के लिए आया है और इस्लाम का मुंतहाए नजर नस्ल, रंग, जुबान और वतन की तमाम असबियतों को मटाकर एहतराम आदमियत को महजूज रखते हुए आलमगीर अकूबत की बुनियादों पर इतिहाद इंसानी का क्याम था। इन्हीं खदशा था कि मुस्लिम अकवाम में अगर वतनियत का यूरोपी तसव्वुर फरोग पा गया तो वो भी मगरबी सफा नंबर 281 रियासतों की तरह एक दूसरे से नफरत करने लगेंगी या आपस में मसरूफ पिकार होकर एक दूसरे के हकूक गजब करने या इंतसाब करने लगेंगे और इस तरह तमाम की तमाम मदमूम हो जाएंगी। इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मुसलमान आलम की ताकत बरकरार रखने और इनकी बका की खातर जरूरी है कि वो इश्तराक ईमान के असूल पर मुतहद होकर मिल्लत इस्लामिया या इतिहाद अकवाम में इस्लामिया को वजूद में लाएं। पस माजनी और बिस्मार्क को अतालवी और अलमानवी कौमों का इतिहाद मुल्की वतनियत के असूलों पर वजूद में लाए, लेकिन इकबाल इश्तराक ईमान के जज्बे पर मुस्लिम अकवाम के इतिहाद का ख्वाब देखने लगे। 1907 में इकबाल के कल्बी और जहनी इनकलाब का एक लाजमी नतीजा यह भी निकला कि उन्होंने बरसगीर हिंद में कौमी मुल्की कौमियत की बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम इतिहाद के ख्याल से किनारा कशी किया था। इसका सबूत भी इनकी एक तहरीर में मौजूद है। इकबाल जुलाई 1908 में लाहौर वापस पहुंचे। 8 माह बाद इन्हें मुंशी गुलाम कादर फरख ने अमृतसर में कायम शुदा हिंदू मुस्लिम और सिखों की अंजमन मनरो अलाज के सालाना जलसे में शिरकत के लिए मदु किया। आपने इन्हें अपने खत मुहर्रा 28 मार्च 1909 में तहरीर किया। मेरा ये नजरिया रहा है कि इस मुल्क हिंदुस्तान से मजहबी इख्तलाफात उठ जाने चाहिए और मैं अब भी अपनी निजी जिंदगी में इसी असूल पर कारमंद हूँ, मगर अब मैं सोचता हूँ कि हिंदू और मुसलमानों के लिए बेहतर यही है कि वो अपना अपना कौमी तशख्स एक दूसरे से अलग बरकरार रखें। हिंदुस्तान के लिए एक मुश्तरक कौमियत का तसव्वुर बजाय खुद नहायत हसीन और शायराना कशिश का हमल है। ताहम मौजूदा हालात और दोनों कौमों के नादानिस्ता रुझानात के पेश नजर वो नाकाबले अमल है। सफा नंबर 282 क्या में यूरोप के दौरान इकबाल के कलम व ज़हन में ये इंकलाब बड़े दौर रस नतायज का हमल था। अहम मुमकिन है कि फारसी की तरफ इनकी तबीयत का रुख इसी सबब से हुआ हो। चुनचा इसी दौर में ना सिर्फ इनकी तलीम की तकमीर हुई बल्कि शायरी भी एहसास के मुख्तलिफ मराह तय करती हुई एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से इसे जुज पियम्बरी बनने के लिए जस्त लेना थी। इकबाल 3 जुलाई 1908 को इंग्लिस्तान से वतन रवाना हुए। वापसी पर जब इनका जहाज इटली के जजीरा सिसलीज के साहल के करीब से गुजरा तो इनके दिल पर कुछ और ही जज्बात मौजे जन थे। वो सिसली को माजनी की सरजमीन के तौर पर नहीं बल्कि तहजीब जहाजी के मजार की सूरत में देख कर रो दिए थे। है तेरे असार में पोशीदा किसकी दास्तान, तेरे साहल की खामोशी में है अंदाजे बयान, दर्द अपना मुझसे कह मैं भी सरापा दर्द हूँ, जिसकी तू मंजिल था मैं इस कारवां की गर्द हूँ, रंगे तस्वीर कहन में भर के दिखला दे मुझको, किस्सा अयाम सब का कह के तरपा दे मुझको, मैं तेरा तोहफा सोए हिंदुस्तान ले जाऊंगा, खुद यहाँ रोता हूँ औरों को वहां बुलाऊंगा। इकबाल मुंबई से होते हुए 25 जुलाई की रात को दिल्ली पहुंचे। अहबाब स्टेशन पर इनका इस्तेमाल करने की खातर आए हुए थे। अगले रोज अहबाब समेत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे और मजार के पहलू में खड़े होकर देर तक दस्ते बदआर रहे। सारा दिन दरगाह ही में गुजारा। अहबाब में नैरंग और मकबूल अहमद निजामी ने इनकी आमद की खुशी में नज़में पढ़ी, क़वाली का लुत्फ भी उठाया। ख्वाजा हसन निजामी मीर मजलस के शाम को गालब की कब्र पर गए और फातिहा पढ़ी। 27 जुलाई 1908 को दोपहर की गाड़ी से लाहौर पहुंचे। स्टेशन पर अहबाब ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वहां से भाटी दरवाजा के बाहर बल्दिया के बाग में आए जहां शेख गुलाबुद्दीन ने इनके एजाज में एक दावत दे रखी थी। इस तकरीब में कोई 150 के करीब अहबाब शरीफ हुए। सर मोहम्मद शफी ने इनकी शख्सियत और शायरी के बारे में तकरीर की। मौलाना हामद हसन कादरी, अल्लाह यार जोगी, मुंशी गुलाम अली खान, गुलामी मुंशी नजर मोहम्मद और बदरुद्दीन कैसरी ने इनकी आमद की खुशी में नजमें पढ़ी। इस तकरीब से फरागत के बाद इसी दिन शाम की गाड़ी से सियालकोट रवाना हो गया। सियालकोट में भी इनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। प्लेटफॉर्म इस्तकबाल करने वालों से खचा खच भरा हुआ था। इकबाल के वालिद भाई और दीगर अज़ा व अहबाब मौजूद थे। शेख इजाज अहमद इस वक्त 9.5 बरस के थे और अपने वालिद के साथ वहां गए हुए थे। हार इतनी कसीर तादाद में पहनाए गए कि इकबाल का चेहरा फूलों में छुप गया। बड़ी मुश्किल से स्टेशन से निकलकर घर पहुंचे और अपनी माँ से जो गुज़िश्ता 3 साल के इनके लिए चश्मे बरा थी लिपट गए। सफा नंबर 284 माखज बाब नंबर 7 नंबर 1 इकबाल नामा मरतबा शेख पता उल्ला जिल्द 2 सफा 228-229 नंबर 2 नजर इकबाल मरतबा मोहम्मद हनीफ शाहिद सफा 10 नंबर 3 अलामा इकबाल यूरोप में इस डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी नंबर 4 इकबाल की तकरीरें और बयानात मरतबा ए आर तारक अंग्रेजी सफा 142 नंबर 5 एजन सफात 140-151 नंबर 6 इकबाल के जोहार रेजे इस ख्वाजा अब्दुल हमीद सफात 11-12 नंबर 7 एजन सफा नंबर 10 नंबर 8 मुतालिया इकबाल मरतबा गौहर नौशाही सफा 2488 नंबर 9 अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमदार सफा 53 नंबर 10 इकबाल नामा हिस्सा 2 सफा 353-354 नंबर 11 नजर इकबाल सफा 789 नंबर 12 इसारे इकबाल मरतबा गुलाम तस्गीर रशीद मजमून इलामा इकबाल की खिदमत में चंद लम्हे इस डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी सफात 39-41 नंबर 13 अनवार इकबाल सफात 30-31 नंबर 14 नजर इकबाल सफा 79 नंबर 15 इकबाल इस अतिया बेगम डायरी अतिया बेगम मुतरजम जियाउद्दीन अहमद बरनी सफात 97-98 नंबर 16 एजन सफात 98-99 नंबर 17 एजन सफात 99-100 नंबर 18 नजर इकबाल सफात 10-11 नंबर 19 इकबाल इस अतिया बेगम सफात 100-102 नंबर 20 नजर इकबाल सफा नंबर 79 नंबर 21 इकबाल इस अतिया बेगम सफात 103 नंबर 22 एजन सफात 107-108 हाइडलबर्ग में इकबाल की रहायश 58 न्यू हाइमर लाइन स्ट्राइस से पर की जर्मन हुकूमत ने इनके नाम की तख्ती इस मुकाम की दीवार में नसब कर रखी है। दरियाए लीकर के दूसरे किनारे की सड़क को इकबाल के नाम से मंसूब कर दिया गया है। इसी सड़क के किनारे एक बाग में पत्थर की एक बड़ी सी सेल पर दरियाए लीकर के किनारे एक शाम का जर्मन जुबान में तर्जमा कुंदा है। हाइडलबर्ग के साउथ एशियन इंस्टीट्यूट में इकबाल चेयर कैंटी गया। इलामा इकबाल यूरोप में इस डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी नंबर 23 एजन सफा 106-121 नंबर 24 इकबाल नामा हिस्सा 2 सफा 358 नंबर 25 इकबाल रिव्यू अप्रैल 1976 मजमून इकबाल इंग्लिस्तान में इस एस ए वाहिद अंग्रेजी सफा 2 नंबर 26 शादे इकबाल मरतबा डॉक्टर मुहियुद्दीन जोर सफा 45 जर्मन मुस्लिम मोहम्मद अमानुल्लाह होबू हम की तहकीक के मुताबिक इस जमाने में लंदन में इकबाल 49 एल शाम रोड किंगस्टन में मुकीम थे। लंदन में इकबाल की रहायशगाह की निशानदही अंग्रेजी रिपोर्ट डॉन 8 मई 1982 नंबर 28 मलफूजात इकबाल मरतबा अबू लैस सदीकी सफा 79 नंबर 28 नजर इकबाल सफा 10 नंबर 29 शायर मशरक अंग्रेजी सफा 17-18 नंबर 30 जिक्र इकबाल इज अब्दुल हमीद जीत सालक सफा 57 नंबर 31 इकबाल के जोहर रेजे सफात 12-13 नंबर 32 इशारे इकबाल सफा 36 नंबर 33 नजर इकबाल सफा 8 नंबर 34 एहसन सफा 9 इकबाल की इब्तदाई गजलों और कतों में कई फारसी अशार मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने फारसी को इजहार जज्बात व ख्याल का जरिया इस तरह ना बनाया जैसे बाद में बनाया। नंबर 35 प्याम मशरक और बाद दिगर कुतुब की नज़मों के मुताले से मालूम होता है कि वो फ्रांसीसी अदब से भी शनासा थे। नंबर 36 ईरान व हिंदुस्तान का असर जर्मन शैली पर इज एफ जे रिमी अंग्रेजी मुतजर्रम रियाजुल हसन सफात 35-41-46-49-51-53-60-61 नंबर 37 فکر اقبال اس خلیفہ عبد الحکیم صفحہ 75 نمبر 38 بانگے درا صفحات 149-150 نمبر 39 نظر اقبال صفحہ 146 نمبر 40 اقبال نامہ حصہ اول صفحہ 109 نمبر 41 ایزن صفحہ 426 نمبر 42 روزگار فقیر جلد دوم صفحہ 93 نمبر 43 نوار اقبال صفحات 176-177 نمبر 44 وسیع المشربی یا ہومونزم کی روش کی اخلاقی قدر و قیمت سے اقبال کو انکار نہ تھا کیونکہ اس کے نتیجے میں تعصب اور تنگ نظری کا ازالہ ممکن تھا، مگر اس کی روح نفرادی تھی اس لیے چند لوگوں سے آگے نہ بڑھ سکتی تھی، یہ ایک فطری رجحان تھا اور بس۔ اجتماعی و سیاسی اعتبار سے اتحاد انسانی کا کوئی پہلو اس میں سے نہ نکلتا تھا، لہذا یہ ایک عالمگیر معاشرے کی تعمیر کا ذریعہ نہ بن سکتی تھی۔ نمبر 45 سورہ 49 آیت نمبر 13 حضور نے بھی خطبہ حجت الوداع میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قوم میں سے سب سے افضل وہی ہے جو متقی ہے، اور کسی عرب کو کسی غیر عرب پر فضیلت نہیں سوائے نیک کرداری کے۔ نمبر 46 سفینہ حیات ملفا منشی غلام قادر فرق صفحات 22-23 صفحہ نمبر 288 باب نمبر 8 فکر معاش۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال کے لیے سب سے اہم مسئلہ فراہمی روزگار تھا، انہوں نے اپنی تعلیم کے تکمیل بڑے بھائی شیخ عطا محمد کی مالی امداد سے کی تھی، اور اب شیخ عطا محمد کی فوج سے ریٹائرمنٹ میں چند سال باقی رہ گئے تھے، علاوہ اس کے ان کی اپنی عیالداری بھی تھی اور وہ تین بیٹوں اور تین بیٹیوں کے باپ تھے، نیز والدین کے بڑھاپے کا سہارا بھی وہی تھے۔ اقبال نے قیام یورپ کے دوران غالباً 1908 کے ابتدائی حصے میں گورنمنٹ کالج لاہور کی ملازموں سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ آمدنی کا ذریعہ بھی موجود نہ رہا تھا، لہذا اب اقبال کے لیے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس پیشے میں قدم جمانے کے لیے بھی وقت درکار تھا اور بڑے بھائی کی مزید مالی آنانت کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ باخوشی تیار تھے۔ اگست 1908 کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جب اقبال ابھی سیالکوٹ ہی میں تھے، شیخ عطا محمد لاہور آیا مرزا جلال الدین کی وساطت سے موہن لال روڈ، جسے آج کل اردو بازار کہا جاتا ہے، پر منشی گلاب سنگھ کے مطبعہ مفید عام کے قریب اقبال کی رہائش اور دفتر کے لیے ایک مکان کرائے پر لیا۔ چند دنوں کے بعد اقبال لاہور پہنچ کر اسی مکان میں فروکش ہوئے، دفتر کے لیے قانونی کتب کی ایک معمولی سے لائبریری خرید کی اور ہندو منشی کہان چند رکھا، علی بخش کو بھی بلوا لیا گیا۔ اقبال نے پریکٹس کی ابتدا نچلی عدالتوں سے کی اور چند ماہ بعد انہی عدالتوں میں کام کرتے رہے، مگر نچلی عدالتوں میں کام کرنا انہیں پسند نہ آیا، کہاں چند بھی لین دین کے معاملات میں ہمیشہ جگڑتا رہتا تھا۔ 30 اکتوبر 1908 سے اقبال کی بحثیت ایڈوکیٹ انرولمنٹ ہو گئی، اور اس صفحہ نمبر 279 حکم نامے کے تحت انہیں چیف کورٹ پنجاب میں پریکٹس کرنے کی اجازت مل گئی، اور وہ لاہور کے بار روم میں داخل ہوئے جو میاں شاہ دین، سر فضل حسین، سر محمد شفیع، سر شہاب الدین، سر شادی لال، لالا لاجیت رائے، پنڈت شیو نارائن شمیم، پیر تاج الدین، غلام رسول، بیرسٹر مرزا جلال الدین وغیرہ جیسی مقتدر ہستیوں کے سبب مشہور تھا۔ چیف کورٹ پنجاب میں اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے اقبال سخت محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ شعر و شاعری کے شغل سے بھی کچھ مدت کے لیے دور رہے۔ اقبال نے صرف چند عرصے تک موہن لال روڈ والے مکان میں قیام کیا۔ اکتوبر 1908 میں وہ انار کر کے اس مکان میں اٹھ آئے جس میں ان سے بیشتر سر فضل حسین اور پھر سر محمد شفیع مقیم رہ چکے تھے۔ یہ مکان پہلے مکان سے کشادہ تھا، اسی مکان میں آپ کی سکونت تھی اور اسی میں دفتر بھی تھا۔ کہاں چند کی جگہ سر محمد شفیع کے منشی طاہر الدین کی خدمات حاصل کی گئی، منشی طاہر الدین بھی اس مکان کے عقب میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اقبال ان پر بہت اعتماد کرتے تھے اور اپنی عمر کے آخری دن تک انہوں نے ان سے تعلقات قائم رکھے۔ یہ وہی منشی طاہر الدین ہیں جنہوں نے بعد میں حکیم طاہر الدین کی حیثیت سے دل روز نامی دوا ایجاد کر کے خوب نام پیدا کیا۔ انہوں نے مئی 1940 میں انتقال کیا۔ اقبال کو بچپن سے کبوتر پالنے کا شوق تھا، جب وہ سیالکوٹ سے لاہور موہن لال روڈ والے مکان میں منتقل ہوئے تو کبوتر ساتھ لائے تھے، اب انارکلی والے مکان میں سکونت اختیار کی تو کوٹھوں پر کبوتروں کے رکھنے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اقبال 1922 تک اسی مکان میں پروکش رہے۔ مرزا جلال الدین ان ایام میں اقبال کی زندگی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، डॉक्टर साहब की तबीयत में जराफत का बहुत दखल था। वो फारग औकात में बार रूम में बैठ कर जब अपनी पुरलुत्फ बातों और जरीफाना गुफ्तगु को शुरू करते तो मुतअद्दद अफराद इनके गर्दन गिर्द जमा हो जाते। हिंदुओं में पंडित शिव नारायण शमीम को इकबाल के खास उन्नत तौर पर डॉक्टर साहब की बातों में खास दिलचस्पी लेते। इस दौरान में मेरे और डॉक्टर साहब के तलबात बहुत गहरे हो चुके थे। हमारा मामूल यह था कि 10 बजे के करीब हम चीफ कोर्ट में पहुंचते मुकदमात के शुरू होने तक इधर उधर की गप चलती और जबकि मुकदमा खत्म हो जाता तो दूसरे के शुरू होने तक फिर बाथरूम में आ जाते। मुंशी ताहिरुद्दीन की जेब में कैंची के सिगरेटों की डब्बी पड़ी रहती थी। डॉक्टर साहब सिगरेट सुलगा कर कुर्सी पर बैठ जाते और लताइफ पर पुरमजाक बातों से वक्त काटते। बाद में तो यहाँ तक नौबत पहुंची कि वो अक्सर अदालत आलिया के काम से फारग होकर वो मेरे हमरा मेरे दफ्तर में तशरीफ ले आते और रात देर गए तक मेरे पास ही ठहरते। इन्हीं अजाम में डॉक्टर साहब की मुलाकात नवाब सर जुल्फकार अली खान मरहूम के साथ भी हो गई और इसी तरह सर जोगिंदर सिंह जोगी से मुरासम कायम हो गए। जुल्फकार मिर्जा इकबाल और मैं कभी नवाब साहब के दौलत खाने पर और कभी मेरे दफ्तर करीबन बिला नागा मिला करते। हमारे महमी तलकात ऐसे गहरे थे कि सर मियाँ मोहम्मद शफी मरहूम व फजल हुसैन मरहूम हमें ट्राइयो असहाब सलासा के नाम से याद करते। अभी वकालत का पेशा अख्तियार किए 2-1 माह ही गुजरे थे होंगे कि इकबाल को MAO कॉलेज अलीगढ़ में फलसफे की प्रोफेसरी की पेशकश हुई लेकिन उन्होंने इसे कबूल ना किया। इसी तरह April 1909 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तारीख की प्रोफेसरी भी ठुकरा दी। इकबाल को हमा वक्त वक्ती तौर पर मौलवी का पेशा अख्तियार करने में इसलिए तामत था कि यह कोई माकूल आमदनी का जरिया ना था। इनके नजदीक वकालत का पेशा अख्तियार किए रखने में माली बेहतर माली मुस्तकबिल के अमकान थे। सफा नंबर 291 1 अक्टूबर 1908 से जब ब्रिज सदर शोभा फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 1 साल के रुख्सत पर गए तो इनकी जगह आर्नस्टन वाइट जेम्स को कायम मकाम प्रोफेसर फलसफा मुकर्रर किया गया लेकिन जेम्स 1 मई 1909 को अचानक फौत हुए। इनके सामी पुर करने के लिए फौरी तौर पर किसी अंग्रेज प्रोफेसर का इंतजाम हो सकना मुमकिन न था। चुनचा प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब ने इकबाल से इस्तदा की कि आर्जी तौर पर फलसफे की प्रोफेसरी कबूल कर लें। गर्मियों का मौसम था इसलिए तदरीसी औकात इकबाल के पेशे वकालत की जिम्मेदारियों में हायल ना हो। इकबाल कॉलेज इनके पीरियड सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मुतय्यन करने को तैयार था मगर गर्मियों की तातील अकबर क्योंकि कॉलेज और कोर्ट के औकात में तसादम यकीनी था इसलिए इकबाल और गांडले अंडर सेक्रेटरी तलीम हुकूमत पंजाब ने कोर्ट के चीफ जज व जज साहबान को तहरीर किया कि इकबाल के मुकदमा ऐसे अखबार में पेश हुआ करें जब वो अपने तदरीसी फराइज से फारग हो जाए। इस जमाने में इकबाल की प्रैक्टिस इब्तदाई मरहल में होने के सबब बराए नाम थी इसलिए इजाजत मिल गई। चुनचा उन्होंने 10 मई 1909 से गवर्नमेंट कॉलेज में आर्जी तौर पर फलसफा पढ़ाना शुरू कर दिया। 12 अक्टूबर 1909 से इनकी बुनियादी तनख्वाह 500 रुपए माहवार मुकर्रर हुई। गर्मियों के महीने में वो सुबह सुबह घर से सीधे कॉलेज आया करते थे और 3 घंटे लेक्चर देने के बाद कोर्ट पहुंचते जहां 4 बजे शाम तक अपने मुकदमों की पैरवी करते। जहां फरागत होती तो बार रूम में बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे उड़ाते। सर्दियों में 9 बजे सुबह कॉलेज जाते और वहां से फारग होने के बाद कोर्ट पहुंचते। कॉलेज में वो अपने शागिर्दों में बड़े हर दिल अजीज थे और पढ़ाने का अंदाज सैयद मीर हसन जैसा था। रफ्ता रफ्ता इकबाल की मसरूफियात बढ़ती जा रही थी। 1909 में आप ला पब्लिशिंग प्रेस लाहौर के शाया करदा एक कानूनी रिसाला इंडियन केसेस ला रिपोर्ट्स के हल्का अदालत में बतौर ज्वाइंट एडिटर शामिल हो गया। अंजुमन हमायत इस्लाम और अंजुमन कश्मीरी मुसलमान पंजाब से तल्लक के अलावा इन्हें 26 मार्च 1909 को अंजुमन इस्लामिया पंजाब का रुकन भी मुंतखब कर लिया गया। अंजुमन इस्लामिया पंजाब 1829 से कायम थी और बादशाह मस्जिद व दीगर अहम मसाजिद की निगरानी से ही अंजुमन करती थी। बरकत अली मोहम्मदन हाल का इंतजाम भी इसी के स्पुर था। इस अंजुमन से इकबाल का तलक आखिरी दम तक कायम रहा। 28 दिसंबर 1908 को ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास की सदारत के सिलसिला में ख्वाजा सलीमुद्दीन खान नवाब ऑफ ढाका अमृतसर आए और अंजुमन कश्मीरी मुसलमान पंजाब का एक वक्त जिसमें इकबाल भी शामिल थे इनसे मिला। ख्वाजा साहब की खिदमत में फारसी में तहरीर करता सफा नामा पेश किया गया जिसे इकबाल ने पढ़ा। इन दिनों अंजुमन ने कश्मीरियों को ज़रात पेशा करार देने और फौज में इनकी नुमाइंदगी को मुसर बनाने के लिए तवज्जो में मसरूफ थी। ख्वाजा साहब ने अंजुमन का सरपरस्त बनना कबूल कर लिया और 1909 में इकबाल ही की तारीख पर इनके मसाइल को वासराय ईगल कानून साज काउंसिल के इजलासों में उठाया। इस सिलसिला में इकबाल के चार मरासले भी अखबारों में शाया हुए जिनके जरिए फौजी भर्ती और असूल अराजी की जरूरत कश्मीरियों और हकाम दोनों पर वाजे करने की कोशिश की। इसी तरह मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी सरलिश्त और कलमी के हवाले से बयान करते हैं कि 1909 या 1910 में कश्मीरियों का एक वक्त महाराजा प्रताप सिंह वली कश्मीर की खिदमत में बामकाम कश्मीर हाउस लाहौर जाने वाला था। मोहम्मद फौक इकबाल को बुलाने गया मगर इकबाल वफद में शामिल होने या महाराजा से मिलने पर रजामंद ना हुए। बिलाकर इकबाल के दोस्त इन्हें महाराजा प्रताप सिंह के पास ले ही गए। महाराजा ने इकबाल की इल्मी शोहरत और शायराना अजमत के मुतलक कुछ ना कुछ सुन रखा था। जब इतारफ हुआ तो इकबाल से पूछा, डार साहब सुना है आप बहुत बैत बनाते हैं। इकबाल ने जवाब दिया, सरकार बैत ना कभी मैंने बनाए हैं ना मेरे बाप दादा ने। इसके अलावा मैं डाकदार भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी डाक का काम किया है, ना मेरे बुजुर्गों ने महाराजा हैरानी से। इकबाल के दोस्तों का मुंह तकने लगे। दोस्तों में से किसी ने कहा, हजूर ये शायर है और शेर तहरीर करते हैं, शेर को बैत भी कहते हैं मगर उन्होंने बैत को वो बैत समझा जिससे कुर्सियां बनाई जाती हैं। महाराजा ने इकबाल से कोई शेर सुनाने की फरमाइश की। जब इकबाल शेर पढ़ने लगे तो महाराजा बोले, यूं नहीं गा कर पढ़िए। इकबाल ने फौक की तरफ देखा और दबी जुबान में कहा, जी तो यही चाहता है कि कहो कि मेरे दोस्तों के पास के पाँव में घुंघरू बांध दिए तो मैं गाऊं। फिर चंद शेर तरन्नम से पढ़े और इन्हीं महाराजा ने खुद भी कुछ शेर फारसी के सुनाए। साल डेढ़ साल के इस अरसा में मौलवी और वकालत के सिलसिला में इकबाल को इतनी तवज्जो करना पड़ती कि इनका सारा दिन इसी में सर्फ हो जाता। तमाम दिन तदरीसी मशागल या मुकदमात की पैरवी में गुजरता। शाम को मौकलों की मुलाकात के लिए दफ्तर में बैठना पड़ता, रात गए तक अगले रोज के मुकदमात की तैयारी करते रहते। बसा अवकात तालब इलम घर पर ही पढ़ने के लिए आ जाते, शहर कहने का वक्त ना मिलता बल्कि ऐसी मोहलत के लिए तरसते ही रहते। फौक तहरीर करते हैं कि मई 1910 की किसी शाम को वो और वजाहत हुसैन झंझा जानवी इनके हाथ गए और इनको अपना काम सुनाने लगे। इकबाल सुनने में मोहनक थे कि इसी असना में मुंशी तहरुद्दीन कमरे में दाखिल हुए और कहा कि एक मोक्कल आया और मिलना चाहता है। इकबाल ने जवाब दिया कि इसको बिठाइए, यहाँ से फारग होकर बुलाऊंगा। फौक ने कहा कि बाबा पहले पेट की फिक्र करनी चाहिए, ये शुगर तो होता ही रहता है। बोले, यही शुगर तो गजाए रूह है और रूह है तो सब कुछ है।